इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 19। अमोनियों और अश्शूरियों की पराजय। अम्मोन के वंशजों के राजा नाहाश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हो गया। दाविद ने सोचा, मैं नाहाश के पुत्र हानून पर अपनी दया बनाकर रखूंगा, क्योंकि उसका पिता मुझ पर कृपालु था। इसलिए दाविद ने उसे उसके पिता की मृत्यु के संबंध में सांत्वना देने के लिए अपने दूत भेजे। दाविद के दूत अम्मोन के वंशजों के नगर में राजा हानून को सांत्वना देने पहुंचे, किंतु अम्मोन के वंशजों के शासकों ने हानून से कहा, क्या आप वास्तव में यह मानते हैं कि इन दूतों को आपको सांत्वना देने के लिए भेजते हुए दाविद ने आपके पिता का सम्मान करने का विचार किया है? जरा सोचिए, क्या उसके ये सेवक आपके पास जासूसी करके नाश करने के लक्ष्य से हमारे देश का भेद लेने तो नहीं आए हैं? तब हानून ने दाविद के सेवकों को पकड़कर उनके बाल और दाढ़ी मूंड दी और उनके वस्त्रों को बीच में नितंबों तक काट दिया और उन्हें लौट जाने दिया। कुछ लोगों ने जाकर इसकी सूचना दाविद को दे दी। राजा ने कुछ दूतों को उस सुझाव के साथ बुलवा लिया, आकर यरीखो में उस समय तक ठहरे रहना जब तक तुम्हारी दाढ़ी बढ़ न जाए, तब तुम यहाँ लौट सकते हो, क्योंकि वे इस समय बहुत ही शर्म महसूस कर रहे थे। जब अम्मोन के वंशजों ने यह पाया कि उन्होंने स्वयं को दाविद के सामने बहुत ही घृणित बना लिया है। हानून और अम्मोन के वंशजों ने लगभग 35,000 किलो चांदी देकर मेसोपोतामिया, आराम माखा और जोबा से घुड़सवार और रथ किराए पर ले लिए। इसके द्वारा उन्होंने 32,000 रथ किराए पर ले लिए। माखा के राजा ने अपने सैनिकों के साथ आकर मेदेबा में शिविर डाल दिए। अम्मोन के वंशजों ने अपने नगरों से इकट्ठा होकर युद्ध के लिए मोर्चा बांधा। जब दाविद को इसका समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने योआब के साथ वीर योद्धाओं की सारी सेना वहां भेज दी। अम्मोनियों ने आकर नगर फाटक पर मोर्चा बना लिया, जो राजा इस युद्ध में मिले हुए थे। वे इनसे अलग मैदान में ही ठहरे हुए थे। जब योआब ने यह देखा कि उनके विरुद्ध युद्ध छिड़ चुका है, सामने से और पीछे से भी उन्होंने इसराइल के सर्वोत्तम योद्धा अलग किए और उन्हें आरामियों का सामना करने के लिए चुन दिया। शेष सैनिकों को योआब ने अपने भाई अबिशाई के नेतृत्व में छोड़ दिया कि वे अमोनियों का सामना करें। योआब का आदेश था, यदि तुम्हें यह लगे कि आरामी मुझ पर हावी हो रहे हैं, तब तुम मेरी रक्षा के लिए आ जाना, मगर यदि अमोनी तुम पर प्रबल होने लगे, तब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाऊंगा। साहस बनाए रखो, हम अपने परमेश्वर के नगरों के लिए और अपने देशवासियों के लिए साहस का प्रदर्शन करें कि यहावे वह कर सके जो उनकी दृष्टि में सही है। योआब और उनके साथ के सैनिकों ने अश्शूरियों पर हमला किया और अरामी उनके सामने से भाग खड़े हुए। जब अम्मोनियों ने यह देखा कि अरामी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, वे भी योआब के भाई अबिशाई के सामने से भागने लगे और नगर के भीतर जा छिपे। योआब यरूशलेम लौट गया। जब अश्शूरियों ने यह देखा कि उन्हें इसराइल से हार का सामना करना पड़ा है, तब उन्होंने दूत भेजकर फरात नदी के पार से और भी सेना की विनती की। हाददेजर की इस सेना का प्रधान था शोफक। जब दाविद को इसकी सूचना दी गई, वह सारी इसराइली सेना को इकट्ठा कर यर्दन के पार चले गए और उन्होंने अरामी सेना के विरुद्ध मोर्चा बांधा। दोनों में युद्ध छिड़ गया। अरामी इसराइलियों के सामने पीठ दिखाकर भागने लगे। दाविद ने अरामी सेना के 700 रथ सैनिक, 40,000 घुड़सवार मार गिराए और उनकी सेना के आदेशक शोफक का वध कर दिया। जब हाददेजर के अधीन सभी जागीरदारों ने यह देखा कि वे इसराइल द्वारा हरा दिया गया है, उन्होंने दाविद से संधि कर ली और उनके अधीन हो गए। अब अरामी अम्मोन वंशजों की सहायता के लिए तैयार ना थे।